वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे।
ओम शांति, ओम शांति। पीछे वाली बहने नहीं बोल रही। ओम शांति। आपको आपके प्रश्न पढ़कर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे प्रश्न आए हैं और सबसे खुशी की बात यह है 2000 बहने प्रश्न पूछेंगी तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछे वो तो प्रसन्न हैं ही, और जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं वो भी उम्मीद है कि प्रसन्न होकर ही जाएंगी, क्योंकि बाबा कहते हैं जब प्रसन्न होता है तो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन आपने अपने लिए तो पूछे नहीं हैं, आपने पूछे हैं कि जो लोग जिनसे आपका संपर्क होता है उनको प्रसन्न समझाए जाए। पहली बात यह है कि ये ज्ञान विचित्र है, इसके प्रश्न भी विचित्र हैं और उत्तर तो उससे भी विचित्र होने वाले हैं। अब आपकी समझ में तो आ सकते हैं, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल नए हैं उनकी समझ में कैसे आ सकते हैं उत्तर, ये तो आप सोच सकते हैं। फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह के प्रश्न हैं, तो जो बहुत छोटे छोटे एक लाइन के प्रश्न हैं उसका हम एक लाइन में पहले जवाब देते हैं। पहला प्रश्न ये है, स्वप्न क्यों आते हैं और उसके कारण क्या है। लेकिन प्रश्न करने वाले में ये नहीं बताया कि स्वप्न क्लास के वक्त आते हैं या रात को आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि कल्प वृक्ष में जैन धर्म नहीं है, इसका स्पष्टीकरण करें। कल्प वृक्ष में तो बहुत सारे धर्म नहीं हैं और जैन धर्म छोटा है, लेकिन अगर कोई पूछे जैन धर्म नहीं है तो उसको बताया करो कि ये कल्प वृक्ष का फ्रंट तो इधर है, बैक उधर है, जैन धर्म उधर की तरफ है। इसके बाद प्रश्न है, त्रेता में दो कला कौन सी कम होती है। मैं भी सोच में पड़ गया। अच्छा, फिर मैंने सोचा 16 कला है तो किसी की कोई दो कम हो जाती होंगी, किसी की कोई दो कम हो जाती होंगी, ये डिपेंड करता है। लेकिन वास्तव में कलाएं जो होती हैं ये रोशनी की तरह होती हैं। जैसे बिजली का बल्ब 100 वाट का भी होता है, 60 वाट का भी होता है, तो कई बार ये उत्तर दिया जाता है कलाएं तो सब रहती हैं लेकिन उनकी लाइट थोड़ी कम हो जाती है, 100 की जगह 95 वाट की हो जाती है। अच्छा, बाकी जिसने पूछा है अगर वो व्यक्तिगत मिले तो मैं उनको बता दूंगा कि आपकी कौन सी दो काम होंगी। अच्छा, इसके बाद है, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग सहयोगी बन रहे हैं, तो क्या विनाश समीप है या दूर है। अच्छा, पहली बात, किसका विनाश, बड़े बड़े लोगों का या किसका, लेकिन ये उन्होंने पूछा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात जरूर है कि बाबा तो कहते हैं कि इस यज्ञ में थोड़ा थोड़ा ही गरीब गरीब ही सहयोगी बनते हैं। आपको मालूम है रिट्रीट सेंटर 1 रुपये की इकोनॉमी से बनते हैं, जो लोग 1 रुपया देते हैं उसका टोटल करके बनते हैं। हमारे जितने ब्राह्मण हैं उसमें से आधे भी गिन लो तो 3 लाख ब्राह्मण तो हैं। अगर 3 लाख ब्राह्मण 1 रुपया रोज देते हैं तो महीने में कितना हो गया। कोई तो ऐसी बहन है जो मैथमेटिक्स में फेल हुई हो वो बताओ कि अगर 3 लाख है 1 रोज का तो महीने में कितने हो गए, कितने लाख हो गए, 90 लाख हो गए। उस तरह से हमारे रिट्रीट सेंटर बनते हैं। तो बड़े लोग तो आपको मुरली में आज भी आया था है, गरीबों के ऊपर ही मुरली थी, हमारे लोगों के ऊपर ही थी, बड़े लोगों पर तो थी नहीं। बड़े लोग तो यही स्वर्ग मानते हैं, वो तो अपने धन को बहुत मुश्किल से खर्चते हैं, तो ऐसे कंजूसी वालों का धन तो हम लेते भी नहीं। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि विनाश दूर हो रहा है, बल्कि विनाश नजदीक आ रहा है, क्योंकि बाबा अंत के वक्त सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह बच्चों का धन सफल करा दें। अब आप लोग तो इतना खर्चा करते नहीं, बहुत सादगी से रहते हो, भट्टी में जाने के बाद तो आप और भी सादगी से रहोगे, चपली भी सस्ती खरीदोगे, अब क्या करें, बाबा को तो धन सफल करना है उनका भी, तो कहां करेगा। इसलिए बाबा ने सोचा रिट्रीट सेंटर बना दो, उनका तो धन सफल हो जाएगा, घर में धन विनाश होने की बजाय रिट्रीट सेंटर के साथ जाएगा, उनका तो भाग्य बन जाएगा। इसलिए बाबा रिट्रीट सेंटर बना रहा है, अंत में यज्ञ में ज्यादा ज्यादा आहूति पड़े ताकि उनका धन सफल हो जाए। लास्ट छोटा क्वेश्चन ये है कि स्वर्ग का में प्रशासन कैसा होगा, ठीक है ना, जैसा यहां है। अब आपने ये नहीं पूछा कि यहां का प्रशासन कैसा है, कोई कैसा कहता है कोई कैसा कहता है, लेकिन ऐसा ही होगा, फैमिली टाइप का होगा, उसमें कोई ज्यादा प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्नेह और संबंध से और सम्मान से सब कुछ चलता है। मान लो आप मुझे आके टोली देते हैं कि भाई साहब हम टोली लाए हैं, तो हम क्या करेंगे, आपकी डब्बी खाली थोड़ी वापस करेंगे, दूसरी टोली दे देंगे। आप इस तरह कटा हुआ कलाकंद देंगे, हम इस तरह कटा हुआ दे देंगे, और तो कुछ नहीं है ना। तो स्नेह सहयोग से वहां प्रशासन चलता है। एक बहन थी, उसको खाना बनाना नहीं आता था, बहुत पढ़ लिख गई, अब उसको घर में जाके खाना बनाना था, तो उसको सिर्फ आलू बनाना सीख लिया। अब आलू बनाती रही, रोज बनाती रही, एक महीना आलू बनाती रही। घर वालों ने बोला कुछ तो बदली करो, तो उसने कहा ठीक है अब हम आज दूसरी सब्जी बनाएंगे। फिर आलू बना दिए, उसने बोला ये क्या, बोला पहले मैं ऐसे काट के बनाती थी, आज मैंने ऐसे काट के बनाए। इस वास्ते प्रशासन इसी तरह का होगा, बड़ा खुला प्रेम प्यार का होगा। अब मैं आपको कुछ सीरियस क्वेश्चन जो है उसके उत्तर देने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे है ना, ये कई बहनों ने पूछा है, बहुत सारी बहनों ने पूछा है 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे है, और 84 जन्म उसमें कैसे होते हैं, और अगर ड्रामा रिपीट होता है तो हमें यहां आकर भट्टी करने की यानी प्रशारत करने की क्या जरूरत है। ये तीन बातें उसके अंदर है। मान लीजिए कि ड्रामा 5000 वर्ष का ना हो और 6000 वर्ष का हो, तो फिर आप पूछेंगे 6000 वर्ष का क्यों होता, प्रश्न तो रहेगा ही आपका, है ना। पहली बात इसमें समझने की ये है कि जो लोग ड्रामा की आयु बहुत लंबी बहुत लंबी बहुत लंबी बनाते हैं, लाखों वर्ष की करोड़ों वर्ष की बनाते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है, वो समझते हैं कि कभी ये दुनिया शुरू हुई थी और कभी ये दुनिया खत्म होगी। बहुत 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 समय पहले दुनिया शुरू हुई थी, और जो शुरू होती है वस्तु वो खत्म जरूर होती है। इसलिए उनकी समझ में नहीं आता कि ड्रामा छोटी आयु का भी हो सकता है, रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो रिपीट को तो मानते ही नहीं है। अभी आप सोचो, आपने यहां छोटा सा ड्रामा करना हो, मान लो रामलीला करना हो, कोई भी ड्रामा करना हो, तो उसके लिए क्या चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो एक्टर्स आवश्यक होते हैं कि भाई कौन सी ऐसी बहन है जो सीता बनेगी, कौन सी ऐसी बहन है जो कैकेयी बनेगी, हो सकता कोई ना ही बनना चाहे, बाहर से लाना पड़े, एक्टर होते हैं। दूसरा होता है उसके अंदर कि नाटक करने के लिए स्टेज होता है, आखिर कहां नाटक करेंगे, हनुमान तो तार में आ जाएगा, पवन पुत्र है, बाकी कहां जाएंगे, स्टेज होता है। और उसके बाद उसमें सेट्स होते हैं, जैसा जैसा सीनरियां होती हैं। अब जो ये मानते हैं कि दुनिया बहुत करोड़ों वर्ष से चली आती है, वो ये भी मानते हैं कि इसमें मनुष्य लोग जो हैं वो कुछ करोड़ वर्ष पहले आए हैं, इससे पहले बंदर होते थे, उससे पहले लंगूर होते थे, आदि आदि आदि, उससे पहले कुछ भी नहीं, कीड़े होते थे वो भी नहीं होते थे। उनका भाव यह है पहले स्टेज बना, फिर उसके बाद स्टेज के सेट्स बने, पेड़ पौधे पहाड़ बने, उसके बाद सपोर्टिंग एक्टर बने, सांप बिच्छू वगैरह, उसके बाद मेन एक्टर आए। क्या ऐसा कभी नाटक दुनिया में हुआ है, ये तो सब चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो समझते कभी 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 शुरू हुई थी, तो जो वस्तु शुरू होती है वो अंत जरूर होती है। लेकिन अगर किसी चीज की आत्माएं भी अनादि हैं, उनका एक्टिंग भी अनादि है, क्योंकि आत्माएं होंगी तो शरीर होगा, शरीर होगा तो एक्टिंग करेंगे, बीज होगा तो पौधा भी होगा, पौधा होगा फिर बीज होगा, वो चलता ही रहेगा। दुनिया में कोई भी चीज जो है वो अनादि के सिवाय है नहीं, दिन है रात है, सृष्टि रात को शुरू हुई या दिन को शुरू हुई कोई बता नहीं सकता है। अच्छा बीज है या पेड़ है, पहले बीज पैदा हुआ या पेड़ पैदा हुआ कोई बता नहीं सकता है। पेड़ से बीज, बीज से पेड़, इस वास्ते इसको पहली बात समझाने की यह है कि सृष्टि कोई भी चीज जिसको सदा चलना है वो चक्रिक क्रम से चलती है, अर्थात वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। उसका कोई आद नहीं होता सिरा और उसका कोई अंत नहीं होता। बताने को हम कह देते हैं कि दिन सुबह से शुरू होता है, रात को खत्म होता है, लेकिन ये समझाने के लिए है, अदरवाइज वो चलता ही रहता है, पहली बात। अब ये है कि अगर चक्रिक क्रम से चलता रहता है तो फिर उसके अंदर 5000 साल क्यों बताए गए हैं, है ना। दूसरी बात यह है, इसके लिए हम लोग, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में एक लेसन है, उसमें 5000 साल का साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है। भाव उसका यह है, अगर आप विश्व की आज की आबादी देखें और आज की आबादी में जितने जितने धर्म हैं बड़े बड़े उसकी आबादी देखें, उसके बाद पीछे को जाएं, ये तो सब लोग मानते हैं कि जितनी आज आबादी है पिछली सदी में इससे 1/4 थी, उसके बाद तो बहुत कम थी, उसके बाद तो बहुत कम थी। और एक तो आबादी को पीछे ले जाएंगे, आबादी के बढ़ने की स्पीड को, तो आपको लगेगा 5000 साल पहले से तो आबादी बिल्कुल थोड़ी है, उसके बाद तो आबादी रहती नहीं। इस वास्ते एक तो ये आप बता सकते हैं, आबादी की ग्रोथ के स्पीड के हिसाब से 5000 वर्ष से पीछे आबादी जाती नहीं है मनुष्यों की। दूसरा, धर्मों के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि हमारे जो चार बड़े बड़े धर्म है, ईसाई धर्म है, कितने वर्ष हुए उसको, ईसाई धर्म को कितने वर्ष हुए, 3000। भाई देखो फर्स्ट लाइन में 2000 भी हुए नहीं है। अच्छा समझो 2000, इसके पहले कौन सा था, मुस्लिम, उसको कितने हुए हैं, मुस्लिम, एक इस्लाम है एक मुस्लिम है, एक को 1400 हुए हैं, एक को समझो 2500 हुए हैं। बुद्धिस्ट भी इसी तरह से ही है, तीन बड़े बड़े अगर निकाल दो तो आबादी बहुत थोड़ी रह जाती है, 125 करोड़ रह जाती है। तो अगर इन इतने को 5500 करोड़ में से 300 करोड़ को 2500 साल हुए हैं, तो उससे पहले जो 150 करोड़ है उसको कितने साल हुए होंगे पहले, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 5000 से ज्यादा लंबा कल्प नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें जन्म जो है वो 8, 12, 21 और 42 कैसे हैं। वैसे तो टोटल जन्म हमारे कितने, 83 बनते हैं, 84वां जन्म तो आपका ये है, आप गिनेंगे ना तो 83 बनते हैं, चलो 83 ही सही। तो इस प्रकार से है कि कल्प के युगों की आयु तो बराबर बराबर है। एक बहन ने ये भी, एक दो ने पूछा है कि बराबर बराबर क्यों है, 1250 1250 क्यों है। उसका उत्तर ये है कि किसी भी वस्तु की लाइफ अगर आप गिनेंगे, मान लो आप इस ग्लास की लाइफ गिनते हैं या किसी भी चीज की, अगर उसकी लाइफ 100 वर्ष है, 50 वर्ष है, 200 वर्ष है, तो उसमें से 1/4, पहला 1/4 उसको नई कहते हैं, अभी तो नया ही लिया है। अच्छा जब 1/4 पूरा हो जाता है तो दूसरा 1/4 में थोड़ा थोड़ा पुराना कहना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब बिल्कुल आधा हो जाता है फिर उसको पुराना ही कहते हैं, और उसके बाद लास्ट जो 1/4 होता है उसको बहुत पुराना कहते हैं। ये तो नियम है, कोई व्यक्ति भी होता है पहले बच्चा कहते हैं, फिर युवा कहते हैं, फिर मैच्योर कहते हैं, फिर ओल्ड प्राउड कहते हैं, फिर ओल्ड कहते हैं। इसी हिसाब से दुनिया की हर चीज की आंका जाता है। तो अगर उसको 4 हिस्सों में बांटा जाए तो पहला गोल्डन, दूसरा सिल्वर, तीसरा कॉपर, चौथा आयरन, इस प्रकार से ये 1250 1250 बांटे गए हैं। अब ये है कि उसके अंदर जन्म कितने हुए, तो क्योंकि शुरू में सब चीज सतोप्रधान होती है तो जन्म भी कम होते हैं, क्योंकि सबके शरीर ज्यादा देर चलते हैं, थोड़ी सी सतो हो जाती है तो जन्म थोड़े से बढ़ जाते हैं, और अगर बिल्कुल थोड़ी रजो हो जाती है तो जन्म और भी ज्यादा हो जाते हैं, और तमो में तो बहुत जन्म हो जाते हैं। इस हिसाब से वो जन्म धीरे 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 बढ़ते गए, अर्थात सतयुग में आयु ज्यादा जन्म कम, त्रेता में आयु भी काफी जन्म फिर भी कम और कलयुग में आयु थोड़ी जन्म ज्यादा, इस हिसाब से ये बांटा गया है। समझाने के लिए उसको इस तरह से कहा गया है। अगर एक आध चेंज भी कर दें किसी को क्या फर्क पड़ता है, जब कोई चीज समझाई जाती है तो मोटे रूप से समझाई जाती है। कोई कहे इस हॉल में कितनी बहनें बैठी हैं, हम कहेंगे 2300, कोई कहेगा नहीं जी 2316 है, ठीक है 2316 होंगी। तो इसलिए जनरल समझाने के लिए उस बात को राउंड किया जाता है। अच्छा, अब रह गई बात, ड्रामा अगर रिपीट होता है हमें प्रसारित करने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब प्रश्न ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप गौर से सुनना। वास्तव में ये फिक्स ड्रामा का ज्ञान इसलिए बाबा ने दिया है कि आप अपने ड्रामा को चेंज कर सको। कई ये समझते हैं कि ड्रामा फिक्स के ज्ञान का अर्थ ये है हम अपने ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको फिक्स ड्रामा का ज्ञान इसीलिए दिया गया है कि आप अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। आप कहेंगे कैसे, तो यही बात आपको हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। मान लो बाबा फिक्स ड्रामा का ज्ञान देता ही नहीं, बाबा तो कल्याणकारी है, वो सोचता कि बच्चे मूंझ जाएंगे खाम खा में इसलिए उसको दो ही नहीं। तो बाबा ने अगर दिया है तो किसी कल्याण को सोच कर दिया है कि फिक्स ड्रामा का ज्ञान दो ताकि बच्चे अपना ड्रामा चेंज कर सकें। कैसे, अब तक इस डेट तक, इस मिनट तक, 9:45 तक जो कुछ होना था वही हुआ, ठीक है, वो बदल तो नहीं सकता। जैसे किसी कैमरा के अंदर आपके 20 उसके अंदर फिल्म है, शॉट है, और आपने 16 उसमें से एक्सपोज कर लिए, उसको खींच लिया, तो जो 16 खींच गए उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप चाहते थे इसमें हिरण खींच लें, अचानक गधा सामने आ गया, वो ही आ गया, हो सकता है। आपने सोचा ये मक्खी खींच लें, मधु मक्खी वो उड़ गई, खाली हो गया, जो भी किया, लेकिन वो 16 तो खत्म हो गए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, जिस दिन आपको ये ड्रामा का ज्ञान मिला था, ड्रामा फिक्स है, तब तक तो जो हो गया वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद भी आज तक भी जो हुआ आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ड्रामा का ज्ञान भविष्य के लिए दिया गया है कि आपको ये बताया गया है बाबा ने कि आप अपनी फिल्म को दोबारा शूट कर रहे हो और आपकी जो कुछ आप अब करोगे वो फिट हो जाएगा। मान लीजिए अब हम सब बैठे हैं, एक टीवी वाला आ जाता है, बीबीसी वाला, कह रहे इतनी बहनें आई हुई हैं चलो उनका टीवी लेकर आए। वो कहते अरे भाई हम टीवी लेने जा रहे हैं, तो अब आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहोगे या थोड़ा चेंज करोगे, ऐसे करके बैठ जाओगे थोड़ा कि भाई टीवी आने वाला है, हो जाएगा ना फर्क। क्यों आया वो, कि भाई टीवी वाला आ रहा है, वैसे तो हम बैठे हैं लेकिन जो टीवी में आ गया, किसी ने ऐसे किया हुआ, किसी को नींद ही आ रही है तो ऐसे आ रहा है, तो सोचेंगे अभी तो आंखें खोल के बैठो टीवी आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बाबा ने बताया है कि आप जो कुछ अब से लेकर आगे करोगे वो फिक्स हो रहा है। अब ये आपको पता है कि है फिक्स, लेकिन अब आप इसको रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए एक दिन सुबह आप रात को 12 बजे तक किसी बहन से बातें करते रहे, बाबा ने तो मना किया हुआ रात को बातें नहीं करना, लेकिन कोई अच्छी बात होगी आप करते रहे, बाबा ने तो कहा गेट पर बात करके फिर सोने के लिए आओ, लेकिन करते रहे। अब वो तो नूंद गया, सुबह आपको क्लास में जाना है अमृत वेले, है ना बहन, आज भी बाबा ने संदेश दिया अमृत वेले जो करोगे मांगोगे वो मिलेगा। आपकी आंख कुदरती खुल जाएगी 4:15 3:30 रोज की आदत है खुल जाएगी, खुल गई। अब आपने घड़ी की तरफ देखा, ओ 4:15 हैं, अरे मैं तो रात को 1 बजे सोई थी, ये फिर ये आएगा, फिर कहेंगे मैं थकी हुई हूं, क्योंकि मैं 1 बजे सोई थी इसलिए थकी हुई हूं, क्योंकि आंख तो खुल गई नेचुरल अभ्यास से, लेकिन ये बुद्धि में संकल्प आया या किसी को सपना आ गया होगा जिसने सपने का प्रश्न पूछा। अभी आपने सोचा चलो वहां जाके भी ऐसे ही यहीं बैठे रहो, यहीं योग कर लेंगे। अच्छा, अचानक आपको ख्याल आया बाबा ने कहा है ड्रामा रिपीट होता है, अगर आपने अभी मैंने हिम्मत करी और जाके मैं क्लास में चली जाऊं चलो तो बाबा मदद करेगा, और अगर मैं सो जाऊं तो हर कल्प मैं सोई रहूंगी। मान लो ये पॉइंट उस समय आपके पास आ जाता है। बाबा कहता हर पॉइंट को, हर शक्ति को, हर चीज को समय पर आ जाए तो काम आती है, समय पर ना आए तो कोई काम नहीं आती। इसलिए आपने उस दिन सोचा कि नहीं ठीक है कुछ भी है, पानी डाल के हैं आंखों में मैं जाती हूं, और आप चले गए क्लास में। तो वैसे अगर ये पॉइंट याद ना आती तो शायद आप रेस्ट कर लेते। तो आपने अपना ड्रामा चेंज किया, किस चीज से चेंज किया, इस पॉइंट से चेंज किया कि ड्रामा रिपीट होता है। इसलिए ये जो पॉइंट मिली है इसलिए मिली है कि आप भविष्य में जैसे और बातें यूज करके अपना जमा करते हो, गुलजार बहन ने भी आपको जमा करने की कितनी सारी बातें बताई हैं, तो ये भी आप कभी इस पॉइंट को लेकर आप हिम्मत करके और अपनी आलस को, अलबेलेपन को, लापरवाही को दूर करके कुछ कर लेते हो इस पॉइंट से, तो आपका ड्रामा चेंज हो जाता है। इसलिए ये फिक्स ड्रामा का ज्ञान बाबा ने ड्रामा चेंज करने के लिए दिया हुआ है। जो फिल्म शूट हो गई वो तो हो गई, जो बाकी की बची हुई है, हैं अगर कोई मक्खी बैठी है तो आप ऐसे नहीं करोगे, पहले देखोगे उड़ जाए फिर करोगे, ये है। अच्छा, अब दूसरी बात है वो है एडवांस पार्टी की। अब मालूम नहीं कौन कौन एडवांस पार्टी में जाना चाहते हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, मेरे को मालूम नहीं है। और ये भी ज्ञान है कि जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको नहीं जाना वो चाहेगा भी तो नहीं जा सकता। फिर भी प्रश्न ये पूछा है कि एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या अगले जन्म में जाके मुरली सुनेंगी। पहली बात, अगर इस जन्म में भी नहीं सुनती या कम सुनती हैं तो अगले में भी क्या सुनेंगी जाके, है ना। जितना यहां सुनती हैं उतना ही वहां सुनेंगी। अगर रोज सुनती हैं तो रोज सुनेंगी, अगर कभी कभी मिस करती हैं तो मिस करेंगी। ये तो बात हो गई, लेकिन ये प्रश्न है सही। वास्तव में बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग का ये जन्म आपका हीरे तुल्य जन्म है और संगम युग पढ़ाई का युग है, ठीक है। इसमें हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो ब्रह्मा बाबा दिया हुआ ज्ञान है, जो संगम युग की सारी चीजें हैं, चढ़ती कला है, वो यहां तक ही है हमारी। ओके, अब मान लीजिए आप एडवांस पार्टी में कोई आत्मा चली गई, वो बड़ी भी हो गई, अच्छा सुनने लायक भी हो गई। अब प्रश्न यह, क्या वो मुरली सुनेगी, उसको धारण करके अपने नंबर बढ़ा सकती है। असली प्रश्न ये है, मेरा उत्तर यह नहीं, क्योंकि संगम युग का ये जो जन्म है एक ही जन्म है, ये यही होगा। इसके बाद उसकी अपने गुण के कारण जितना जितना किसी ने धारण किया है उसके मुताबिक वो आत्मा अपने रिलेटिव्स को, मित्र संबंधियों को अपने गुण के कारण, अपने उसके कारण ज्ञान में लाने के निमित्त बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। उसका प्रभाव भी पड़ सकता है, जितनी जितनी उसने धारणा की है उसके मुताबिक उसको सुख और वो सब मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन वो बैठकर मुरली सुने और वो अपनी धारणा को बढ़ाए, वो नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। इसलिए कोई इस फिक्र में ना रहे कि हम संगम युग से अगले में जाकर भी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहला सकते हैं, नहीं। अच्छा, अब रह गई बात, एक और भी प्रश्न है कि कई आत्माएं जीव घात कर लेती हैं, है ना, और जीव घात कर लेती हैं, उनकी गति क्या होगी। बहुत साल ज्ञान मिलने के बाद भी कारने कारने जीव घात कर लेती हैं, क्या वो आत्माएं अगले जन्म में, मुरली सुनने का नहीं कहा, अगले जन्म में योग लगा सकती हैं, ये उन्होंने पूछा है। अब पता नहीं क्यों पूछा है। अच्छा, अब आप सोचिए कि कोई भी आत्मा जो सचमुच योग का अर्थ जानती है, थोड़ा बहुत भी जानती है, और जिसने योग का अनुभव किया हुआ है, नॉर्मली वो जीव घात नहीं करेगी। जीव घात वही आत्मा करेगी, बाबा ने कहा हुआ जीव घाती महापापी। एक तो ये अपना इतना अनमोल जन्म को जानते समझते हुए भी उसने जीव घात कर लिया, जबकि बाबा, ब्रह्मा बाबा जब बूढ़ी माताएं यहां होती थी पांडव भवन में, बिल्कुल बूढ़ी खाट पर पड़ी हैं, ब्रह्मा बाबा उनको कहते थे तुम योग लगाओ तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, शरीर छोड़ना नहीं है, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और बाबा को सहयोग मिलेगा। ये तो हम जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम योग लगाना है। योग लगा के ही हम नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो फिर भी कोई आत्मा होता है, किसी का हिसाब किताब होता है, वो ऐसा सख्त कर्म बंधन होता है, कुछ किया हुआ कोई विकर्म होता है जो ऐसा खराब काम करती है। तो जिसने ये प्रश्न किया है पहले तो अपने मन से ही निकाल दे कि मुझे जीवघात करना है, क्योंकि हो सकता है जीवघात का नाम ही इच्छा मात्र विद्या कर दो कि जीवघात ना करना है ना किसी को करने देना है, ठीक है नहीं। इसलिए ये आप निकाल दो। दूसरी बात, ये निकाल दिया तो आगे का सवाल ही नहीं है, वो क्या योग लगाएगी, इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर उठाकर सारे ज्ञान का वो करके, उससे डिससर्विस भी कितनी होती है, बदनामी भी कितनी होती है, सारा करने के बाद वो योग लगाने की तो अधिकारी नहीं रह सकती, ना उसका योग लगेगा। इसलिए जीवघात का नाम निकाल देना चाहिए। इसके साथ संबंधित प्रश्न ये भी है कि जब हम ज्ञान में आते हैं हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक कोई गर्मी के एरिया से आकर किसी पहाड़ पर आ जाए, ठंडी ठंडी हवा लगे तो बहुत खुश होता है। एकदम खराब दुनिया से आकर जब हम अच्छी दुनिया में आते हैं तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा उमंग उत्साह चेंज भी महसूस होता है, खुशी भी आती है। अच्छा, अब जब उस दुनिया में हम आ जाते हैं तो धीरे 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 आकर के वो तो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। जैसे पहाड़ों के लोग रहते ही पहाड़ में है ठंडा, तो उनको तो कोई वैल्यू नहीं है पहाड़ में रहने की, कोई बहुत टिकट खर्च के, किराया खर्च के, हवाई जहाज से छुट्टी लेकर पहाड़ में जाता है, वो ज्यादा ज्यादा सांस लेता है कि और ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाऊं। एक बार हम कश्मीर चले गए गलती से, किसी ने हमारी कंपनी ने हमें भेज दिया, किसी ने कहा यहाँ एक ऐसा चश्मा शाही है जिसका पानी पीने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। अब हमें कोई रोग भी नहीं था, मैंने इतना सारा पानी पी लिया जो पेट फूल गया, फिर भी मैंने बोतल में भी भर लिया कि और भी पी लूंगा, क्योंकि जो दूर से जाता है उसको बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन जब धीरे धीरे आप किसी चीज के यूज हो जाते हैं तो आपको वो साधारण लगने लग जाती है। इसीलिए बाबा कहता है चढ़ती कला चढ़ती कला चढ़ती कला रखो, और ये भी कहता है कि रस्ते में थोड़ी बहुत खेल पाल ना आए, किसी को रोज खीर खिलाते रहो रोज खीर खिलाते रहो, वो खीर से तंग आ जाएगा, वो कहेगा छोड़ो खीर मूंगी की दाल खिलाओ नमक वाली, तो कुछ अच्छा तो लगे। इसी वास्ते कितना भी अच्छा मार्ग है इसमें और ज्यादा कुछ वैरायटी भरने के लिए, कोई ऐसा नाटक दुनिया का नहीं होता जिसमें सारा कुछ हाँ हाँ होता जाए, कोई ऐसा खेल नहीं होता जिसमें सब जीतते ही जाए, जीत जीत कर भी बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें कभी हारने का मौका तो दो। इसी प्रकार से इसमें ऊंच नीच थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अगर हम इसको भगवान की संस्था मानते हैं और किसी को ये नहीं मानते इसने ऐसे कर दिया इसलिए ऐसे हो गया, इसने ऐसे कर दिया इसलिए ऐसे हो गया, ऊपर वालों ने इसकी गलती को छोड़ दिया इसलिए ऐसे हो गया, हम इसको जब संसारिक लेवल पे ले आते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे आप सड़क के ऊपर जाते हैं, इधर भी ट्रैफिक उधर भी ट्रैफिक इधर भी ट्रैफिक उधर भी ट्रैफिक, आप बीच में फंस जाते हैं, क्यों कि ना तो आप तेज चल सकते हैं, पीछे वाला जो है आगे वाला उसको टकरा जाएंगे, आप स्लो चलेंगे तो पीछे वाला हॉर्न बजाएगा, इधर को जाएंगे वो उधर से करेगा, तो आपको बीच में फंस करके जाना पड़ता। जैसे आप इसके बीच में कोई बहन बैठी हो सेंटर में, बेचारी को बाहर जाना हो तो उसको कितनी तकलीफ होती है हम जानते हैं, हो सकता है कईयों को हो भी रही हो। अच्छा, अब आप सोचो कि अगर आप इस दुनिया के अंदर फंस जाओगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर आप ये सोचोगे कि भाई इससे मैं बाहर जाके और तेजी से जा सकती हूँ अपने रास्ते में, ये भी धोखा है, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं यहां आकर किसी के मुंह से ऐसा भी निकल जाता है इससे मेरे लौकिक वाले मुझे ज्यादा प्यार करते हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनका हिसाब किताब होता है और हिसाब किताब वाला आपको देखने में ऐसे लगेगा बहुत स्नेह दे रहा है, किसी को कुछ आपसे लेना हो किसी को कुछ तो दिखावे के लिए भी लेते हैं, देखो तुम ब्रह्मा कुमारी बनी तुमको कोई कम पूछते हैं, यहां आओ हम तुमको गले से लगाते हैं, तुम हमारी बेटी हो इधर बैठ जाओ, ये सब दिखावा है। जैसे दुकानदार लोग कस्टमर को कहते हैं ना आओ आओ कोका कोला पियो, आओ बैठो, ऐसे है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा हाँ क्या बीमारी है बोलो, ये लो लिख के दे देगा, आप समझेंगे मेरे से पूछा ही नहीं कुछ। प्राइवेट वाले के पास जाओ, वो क्या कहेगा, बैठो जी, बहन जी कल से आपने क्या खाया, कल से खांसी आपकी अच्छी है, हाँ जी मैं सारी रात अभ्यास करती रही हूँ, अच्छी होगी इसमें क्या, अच्छा इस प्रकार से बहुत पूछेंगे तो आपको लगेगा इसने मुझे ठीक तरह देखा है। दोनों की दवाई देखोगे एक ही होगी, उसने भी वही लिखी, उसने भी वही लिखी, इस प्रकार से होता है। क्योंकि जब व्यक्ति दूर का होता है ना, उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, उसको जी कह के बुलाया जाता है, प्यार से रखा जाता है, ध्यान रखा। जब अपने घर का हो जाता है तो उसको जी कहना भी छोड़ देते हैं, इधर आओ है ऐसे, तो वो समझते देखा बाहर वालों की इतनी इज्जत कर रहे हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें। या दूसरे का ये पैसे वाले के है, ये पढ़े लिखे हैं, ऐसे बहुत होता है। हमने अपना अनुभव आपको सुना देते हैं, आज तक हमने नहीं माना ये संस्था किसी मनुष्य की चलाई हुई है, हमने ना किसी मनुष्य आत्मा से मांगा है, ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की है कि हमको ये पद मिल जाए, ये पोस्ट मिल जाए, फलाना मिल जाए, भाषण करने का चांस मिल जाए, ये मिल जाए, वो कभी नहीं। और हमारा अनुभव ये है बाबा हमको बहुत संतुष्ट रखता है, एक तो हमारी इच्छा ही नहीं होती, बिना इच्छा के वो पूरी कर देता बिना कहे। क्योंकि एक ने ये पूछा है, कभी बाबा कहता मैं जानी जाननहार हूँ, कभी कहता मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, आखिर वो क्या है, जानी जाननहार है, जानी जाननहार नहीं, क्या है, ये भी प्रश्न पूछा। तो वास्तव में अब बाबा है तो जानी जाननहार, लेकिन वो कहता है क्या मुझे जानना है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी पहली निशानी होती है, उसको ये पता होता है मुझे क्या जानना और क्या नहीं जानना। ज्ञानी का ये मतलब नहीं जो सब कुछ जान जाए, ज्ञानी का मतलब यह है कि जो जानने की चीज है वो जानो, नहीं जानने की चीज है उसको बिल्कुल नहीं जानो, और जो भूलने की चीज है उसको भूल जाओ। मान लो आप राजधानी एक्सप्रेस में कौन कौन सी बहनें बैठी हैं, कभी तो बैठी होंगी, जो जो बहनें राजधानी एक्सप्रेस में बैठी हैं हाथ उठाओ, क्योंकि कई बहनों ने लिखा कि आजकल एयर कंडीशन में बहुत लोग जाने लग गए। हाँ है कोई, अच्छा अच्छा जिन्होंने राजधानी एक्सप्रेस देखी है वो हाथ उठाओ, चलो देखी तो है ना, वो एक ही बात है। वास्तव में ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसमें जिसको हम अच्छा समझते हैं ना दूर से, वो खराब चीज है। मान लो आप एयर कंडीशन ट्रेन में जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, हा 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 एयर कंडीशन, ठंडी हवा आ रही, आपको मालूम है उसमें जितने लोग बैठे होते हैं, उसमें कोई टीबी का मरीज होगा, कोई सिगरेट पीने वाला होगा, किसी को कोई रोग होगा, किसी को दमा होगा, किसी के जर्म्स होंगे, वो सारे उसमें घूमते रहते हैं, वो ठंडे लगते हैं, ठंडे होकर घूमते हैं, लेकिन उसमें बाहर निकलने का तो कोई तरीका होता ही नहीं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको वो सबका सांस आपके थ्रू पास हो रहा है, और आपको भी हो सकता है कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो चीज आएगी तो सही अंदर। अच्छा इससे वो अच्छा है, चाहे हवा गर्म है, फ्रेश तो है, खिड़की खोलो, मच्छर को बाहर भगा दो, उसमें तो मच्छर आ जाए उसको भी भगाना मुश्किल है। इस वास्ते हर चीज में आप देखोगे फायदे ही फायदे हैं, अगर आप फायदे की दृष्टिकोण से देखोगे। क्योंकि एक बहन ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलें, अभी परसों कुछ दिन पहले इस मुरली आई थी कि सूर्य जो है, ये तो आई थी ना, सूर्य जो है सागर के खारे पानी को मीठा कर देता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है कि नहीं बदलता, उसको उठाया और उसको वेपर बना दिया, उसके बाद आप ही उसकी जड़बड़ निकल जाती है। तो बाबा भी यही कहता है, अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो थोड़ी आत्मा को ऊपर ले जाओ, वहां जाके मैं आप ही उसकी गड़बड़ दूर करके नीचे भेज दूंगा। अगर यहीं बैठे रहो के रहें भी सागर में और मीठे भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते इस धरती की लेवल से अगर हम उठ जाते हैं और ऊपर आकाश में, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई पीछे से नहीं कहेगा जल्दी जाओ, कोई आगे नहीं कहेगा धीरे चलो, तो इधर भी नहीं होगा उधर भी नहीं होगा, उड़ती कला का क्या फायदा होता है, यहां से गए और जहां उतरना है वहीं उतरेंगे, रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इस वास्ते इसका फायदा है। कई आत्माएं समझती है कम काम करें तो हम बड़े सुखी हैं, कम काम करेंगे तो आराम है। वास्तव में किसी को सजा देनी हो सबसे बड़ी तो उसका काम छीन लो, उसको कोई काम ना दो, तो यहां बैठ जा, तुझे हाथ में भोजन मिलेगा, जब दिल करे सो जा, एक दिन में वो आत्मा परेशान हो जाएगी। हमारे ऑफिस में भी ऐसे ही होता था, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता था ना, वो समझता था हम कहते थे जाओ कुछ भी नहीं करना, जाओ अपनी तनख्वाह लेते रहो। वो एक जगह दो जगह तीन जगह जाके बेचारा सोचता था दिन कैसे पास होगा मेरा। इस और जो बिजी रहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि माया को भगाने का एक तरीका यह, बिजी रहो, आपको पता ही नहीं लगे आज सोमवार है, शनिचर, आज कौन सा वार है, आज तो भोग खाया पता होगा अच्छा, परंतु वास्तव में भूल जाए टोटली। इसको कहा जाता है आप बिजी रहो, आपको दिन महीने हफ्ते पता ही नहीं लगेगा, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। मैं सुबह शांतामणि दादी को देख रहा था, उसको मैंने 40-45 साल पहले लखनऊ गया था, वहां देखा था, वैसे की वैसे ही है। 45 साल बाबा को याद किया, योग लगा लिया, बैठे रहे, अब शांति वन में सेवा करती है, सब उसके शांत स्वभाव से खुश है। हम शहरों में जाते हैं, इधर उधर भक भाग दौड़ करते हैं, हम समझते हैं बड़े होशियार हैं। कौन होशियार है जिसने शांति का 45 साल अभ्यास किया, जो इधर उधर भागता फिरता है। इस वास्ते हर चीज में फायदा है, भागने वाले को भी सोचना चाहिए मेरी ये ड्यूटी है। हम ये मानते हैं आपको जो रोल मिला है सबसे अच्छा, अगर छोटे का मिला बहुत अच्छा, सिरदर्दी नहीं है, बड़े का मिला तो बहुत अच्छा, बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कोई सेवा ले लेता है बहुत अच्छा कर दिया, नहीं देता तो भी बहुत अच्छा, हम योग लगा रहे हैं, आपको तो कोई नुकसान ही नहीं। ट्रेन अगर लेट हो रही है दुनिया वालों को लेट हो रही है, हमने तो ट्रेन में भी योग लगाना, घर जाकर भी योग लगाना, हमें क्या फर्क पड़ता, और लेट हो जा। इस वास्ते ये सारी बात ऐसी है। एक भाई विदेश से आया, वो बहुत बड़ा है वहां, हम भी उसके शहर में गए हैं, उसकी बहुत बड़ी कार है, बच्चे हैं, बड़ा ऑफिसर है, हमको उसने 2 दिन कार दिया घूमने के लिए, बहुत धन से सहयोगी है, पूरा सेंटर चलाता है। यहां जब वो दिल्ली में आता था पांडे, हमें क्या पता, अंग्रेज तो अंग्रेज ही होते हैं, हम उसको दरी पर सुला देते थे बाकी भाइयों के साथ, तू भी सो जा, वो सो जाता था बेचारा कि बोलेगा क्या। अब बाद में पता लगा वो बड़ा व्यक्ति है। उसने बताया कि जब मैं शुरू में माउंट आबू आया, मुझे हमारी बहन जी ने कहा अरे यहां तुम 1 साल में जितना पुरुषार्थ करते हो, मधुबन तो हमारा हेडक्वार्टर है, वहां सब सैंपल है एक से एक बढ़िया, जिसको देखकर तुम्हें इतनी प्रेरणा मिलेगी, तुम्हारी जीवन बदल जाएगी, और तुम एक दिन में इतनी धारणा कर लोगे, तपस्या भूमि है जितनी धारणा के तुम यहां 1 साल में नहीं कर सकते। उसको तैयार तूर करके वो ले आई और कहा मैं तो पार्टी के साथ आऊंगी, तुम चले जाओ, चिट्ठी दे दिया। वो बेचारा इंडिया में आया, पहले बॉम्बे में आया, फिर ट्रेन में आया, दुखी होता हुआ, दिल्ली इंडिया की ट्रेन है, हिंदी उसको आती नहीं, कर कुरके टैक्सी भी डबल रेट के करके यहां पहुंच गया। अच्छा तो वो उसने बोला कि लेट हो गया बेचारा टैक्सी में, तो राम श्लोक जी ने काफी वेट किया, फिर सोचा पता नहीं कब आता है, चलो लेक का चक्कर लगाते हैं। ये चले गए लेक पर, वो आ गया। अब आ गया तो वहां गेट वाले ने बोला कि कहां से आए हो, उसने कहा ये इधर बैठ जाओ, हमारा भाई आएगा तो तुमको अलॉटमेंट देगा। वो बेचारा बैठ गया। अच्छा अब बैठ गया तो थका हुआ वैसे, और सब लोग घूम रहे हैं, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा, वो बैठा है। अब उसके मन में संकल्प चलने लगा, कहता है अरे भाई मैं खाम खाम में आया, इतना खर्चा करके आया। वो तो कहते थे यहां सारे सैंपल हैं, तो अजीब तरह के सैंपल हैं, सैंपल ही नहीं दिख रहा कहां गया, वो तो घूमने गया हुआ। अच्छा अभी क्या करें, बैठा रहा तो उसके मन में ये संकल्प चलने लगा कि भाई खाम खाम में आए, इतना बड़ा मैं वहां भाई, इतना सहयोगी, इतना मेरा रिस्पेक्ट, यहां आके पहले तो ट्रेन लेट, अब मुझे यहां बिठा दिया, बैठ जाओ ना, मैं स्नान कर सकूं ना कुछ। अचानक उसको एक भाई मिला, बोला क्या बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहता क्या है, मेरी तो टॉलरेंस पावर घट रही है, हैं टॉलरेंस पावर घट रही है, मैं तो सोच रहा हूं, एक बहन ने लिखा है पश्चाताप बार बार हो तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए। अच्छा तो उसने बोला अरे भाई क्यों घट रही है। कहता जी देखो मुझे कोई पहचानता नहीं और मैं यहां वेट कर रहा हूं। तो कहा अरे तुमको क्या बताया था। कहता टीचर सिस्टर ने बताया था, ये तो यूनिवर्सिटी है, यहां तो टीचर का भी एग्जामिनेशन होता है। और मैं तो कहा तुम्हारा तो गेट पर ही एग्जामिनेशन शुरू हो गया, तुम कितने लकी हो, यही तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई। अरे तुम सारा दिन यहां बैठे रहो, कोई बात नहीं, समझो कि मुझे बिठाए रखो, कोई हर्जा नहीं है, मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूं। उसकी टॉलरेंस पावर बढ़नी शुरू हो गई। बोला कि वाह, ये तो खुश हो गया। वो राम श्लोक जल्दी आ गया, उसने कहा लेट आते तो और मेरी बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी चीज को जिस तरह से देखोगे उस तरह से है। तो अगर आप ये मानोगे इस संस्था को भगवान चला रहा है, और अगर कुछ 19-20 हो रहा है, सबके साथ होता है, लोगों के साथ 19-20 होता है, मेरे साथ तो 18-22 भी हो जाता है। अच्छा, अभी क्या करें? तो हमने सोचा होगा कोई बात नहीं, ये तो बाबा की संस्था है, मेरे कर्म हैं, कुछ बहुत जन्मों के हैं, कटने हैं, किसी चीज से तो कटेंगे ना। मान लो अगर यहां हम बैठे हैं और इन्होंने कोई पंखा फिट किया हुआ कच्चा, वो अपने ऊपर आके गिर जाए और कंधा टूट जाए, तो हम क्या करेंगे? कहेंगे भी कर्मों का फल है, कोई बात नहीं, एवर हेल्दी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर तो एवर हेल्दी हैं, हम चाहे रहे ना रहे। अच्छा, हम उसको थोड़ी पंखे को दोष देंगे। अगर हम बाहर जाएं, चलो आज बाहर सैर करने जाते हैं और एक बैल हमें यहां मार दे, वही कंधा फिर टूट जाए, हम बैल को क्या कहेंगे? थोड़ा सा पंखा है ना, वो तो बेजान है, हम कहेंगे ये बैल, फिर सोचेंगे ये तो बैल है, फिर कहेंगे अच्छा मेरे कर्मों का फल है, और तो कुछ नहीं, कंधा तो उतना ही टूटा है। और अगर कोई व्यक्ति आके, मनुष्य, और वो भी कोई ज्ञान का भाई, हमारे कंधे पे कुछ गिरा दे, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा ठहर जा तू, अब तेरे दो कंधे जब तक नहीं तोड़ेंगे ना, हमें चैन नहीं आएगा। अच्छा, अभी बताओ फर्क क्या है? फर्क तो यही है कि हमने मन में ये सोचा इसने तोड़ा है, वास्तव में टूटा तो कर्म से है। तो अगर हम ये मानना शुरू कर दें, खुशी भी कर्म से, गम भी कर्म से, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। मनुष्यों से क्या मांगना? आप लोगों को चुटकुला सुनाते हो क्या? एक फकीर अकबर से मांगने गया, उसने कहा अकबर से कुछ लेना है, उसने कहा वो नमाज पढ़ रहा है, उसने कहा कहाँ पढ़ रहा है? अंदर पढ़ रहा है, वो बाहर बैठ गया, वो अल्लाह से मांग रहा था, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। बोला ये भी फकीर है, ये अल्लाह से मांग रहा है, मैं भी सीधा क्यों ना मांग लूं, वो चला गया वहां से। इसी प्रकार से जब हमारा यज्ञ चलाने वाला ही बाबा है, मनुष्य आत्माएं निमित है, उनको रिस्पेक्ट देना हमारा काम है। अगर कुछ 19-20 होता है, पहले तो ज्ञान की इतनी शक्ति है कि आप उसको खत्म कर दो, वरना कर्मों की फिलॉसफी को मानो, बिना किसी कारण के भी ये हो गया। हम क्या करते हैं? दो बातों में गड़बड़ करते हैं, एक तो ये हम सच्चे हैं, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, आमतौर पर यह होता है। अब आप सोचो मैं चोर हूं, सचमुच चोर हूं, आपको पता नहीं पर मैं सचमुच चोर हूं। अच्छा, अब मान लो मैंने चोरी कर लिया, किसी ने देख लिया, उसने कहा तुम चोर हो, मैं हूं ही चोर, वो मुझे चोर कह रहा है तो मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, मैं तो चोर हूं, वो मुझे चोर कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मान लो मैं चोर नहीं हूं और वो कहता तुमने चोरी कर लिया, तो उसके कहने से मैं चोर बन जाऊंगा? नहीं, मैं तो चोर हूं ही नहीं, तब भी मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं झूठा इल्जाम उसने लगाया और दिक्कत मुझे हो रही है, उसने गड़बड़ की और उसका दुख मुझे हो रहा है, ये कहां की ज्ञान है कि भाई उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अच्छा, उसने गलती की, उसको सफर करना चाहिए, मुझे सफर करना चाहिए? एक तो हम ये करते हैं, दूसरे बड़ों के पास जाते हैं, कहते हैं सचमुच किसी ने गलती की है, एक्चुअल यज्ञ का बहुत नुकसान किया। हम सोचते हैं वो बड़े उसको डांटें, उसको डिसिप्लिन में लाएं। अब बड़ों के लिए तो सब बराबर है, अब किसी डॉक्टर को आप कहें ये पेशेंट बहुत मरीज है, इसको जोर से इतना बड़ा सुआ लगा दो, अभी वो डॉक्टर सोचता है ये तो और मर जाएगा, वो कहता है अच्छा अच्छा तुम बाहर जाओ, हम सुआ लगाते हैं। वो उसको प्यार से कहता है भाई ऐसे ये दवाई लगा लेना, ज्यादा तेरे में ताकत नहीं है। बाबा भी कहता है जितना कमजोर होगा, फटे हुए कपड़े को प्यार से धोना पड़ता है, अगर ठपका भी लगा दो फट जाता है। उनको मालूम है किसको कैसे मारना थोड़ी है, उसको भी ठीक करना है, उसको भी ठीक करना है। तो जानते हुए भी कि झूठ बोल रहा है ये सच बोल रहा है, वो दोनों को अपने अपने ढंग से चला देते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसको सजा क्यों नहीं मिली, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। अच्छा, सजा उसको नहीं मिली, गलती उसने की, हमने बता दिया, हमें दुखी होने की क्या जरूरत है? इसलिए छोटी मोटी बात में आकर, या जिसके साथ हमने रोज ही रहना है, पहले दिन ही हम उसके लिए सोच लें इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये नुक्स है, ये तो ज्ञान में चलने लायक है नहीं, ना ये वक्त पे उठती है, ऐसे नकली आके क्लास में बैठ जाती है, ऐसे दिखावा करके योग में बैठ जाती है, ऐसा हम सोचते हैं, अरे वो जो कर रही है उसको करने दो, हमने क्या लेना है? और उसके साथ रोज रहना है, उसकी शक्ल देख के आपको वो ख्याल आना शुरू हो जाएगा, आपको हलवा भी खिलाएंगे, आपको दलिया लगेगा, फायदा क्या है? इस वास्ते आप खुश रहो, वो अपना पार्ट बजा रही है, वो अपना, अगर वो लोग सारे ही अच्छे बन जाएं तो आपका पद तो और घट जाएगा, तो चांस तो मिलना चाहिए ना। अच्छा है जो वो कर रही है उसको करने दो। इस वास्ते बाबा कहता है अपने आप को खुश रखो, भगवान इस संस्था को चला रहा है, मेरे कर्म बीच में आते हैं उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। खुश रहो, खुश रखो, मौज करो, और बस भट्टी का यही तो मतलब है, यहां से जाओ तो खुश होकर जाओ। ये कभी नहीं कहना हम भट्टी करके भी आए फिर भी हमारा सीरियसनेस दूर नहीं हुआ, है ना। सीरियस तो रहने नहीं चाहिए। सीरियस कौन रहता है? जिसकी बहुत विचार चलते रहते हैं। सतयुग में बुद्धि होती है देवताओं को? होती है कि नहीं होती? जो कहते हैं नहीं होती हाथ उठाओ। सतयुग में देवताओं को बुद्धि नहीं होती, बुद्धि होते हैं, इसको कोई नहीं उठा रहा है। बाबा की रॉयल बुद्धि, रॉयल बुद्धू ना। चलो जो कहते हैं सतयुग में रॉयल बुद्धू रहते हैं, बुद्धू, वो हाथ उठाओ। अभी भी नहीं उठा रहे, बुद्धू कहने में ख्याल आता। सतयुग में बुद्धि होती है लेकिन यूज नहीं करनी पड़ती। जो चीज जिसके पास यूज ना करे उसकी बढ़ जाती है ना। अगर आपके पास धन है, आप 500 का नोट लेके आ गए सेंटर से, वापस 500 को ले गए, जैसे हमारे जगदीश भाई करते थे, उनको खर्चा देते थे बस में जाओ ये वो बचा के वही वापस ले आते थे कि यज्ञ का फायदा कर दिया। तो आप खर्चा नहीं करोगे बुद्धि का तो आपकी बुद्धि कायम रहेगी। जो थानेदार जेब यहां पिस्टल रखता है वो कभी गोलियां चलाता है नहीं, बस पिस्टल रखता है, उसके हर वक्त गोलियां रहती हैं। अगर पिस्टल चलाने लग जाए तो गया। इस वास्ते आपको ये समझना है कि हम बुद्धि को ज्यादा न चलाएं। ओम शांति। हाँ, तांत्रिक। हाँ भाई, तांत्रिक। मैंने कहा कोई तांत्रिक आए सामने तो मैं तांत्रिक के प्रश्न का जवाब दूं। ऐसा है, कईयों ने यह भी पूछा है कि आजकल लोग तांत्रिक वांत्रिक बहुत हो गए हैं, वो तांत्रिक का हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। हम आपको ये बता दें कि ये तांत्रिक वांत्रिक की जो विद्या है ये अज्ञानियों के ऊपर चलती है। किसी भी ज्ञानी आत्मा पर कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, वो करेगा भी तो उसकी फेल हो जाएगी है। इस वास्ते कभी भी ये नहीं सोचना, कई ये सोचते हैं कुछ हो जाता ना, कोई कान में डाल देता है, ये बहन फलाने जगह गई थी किसी तांत्रिक से कुछ ले आई है तुम्हें कुछ करवा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ना हो सकता है ना है। ज्ञानी आत्माएं तो तांत्रिक को भी ठीक कर देती हैं, और इस वास्ते बिल्कुल 0.0% भी किसी तांत्रिक का कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होता। ना ऐसे चक्कर में पड़ना इसने तांत्रिक ने कर दिया, अरे बाबा के शक्ति के आगे ऐसे कौन से तांत्रिक मांत्रिक हैं जिसकी शक्ति चलती है, कुछ नहीं है। ओम शांति।